ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज विशेष मकर संक्रांत का भी दिन है। ऐसे तो बेहद यज्ञ में हम सभी एक दो को मिलते रहते हैं, लेकिन आज सामने मिलने का सौभाग्य बाबा ने और बड़ों ने दिया हुआ है। संक्रांत के दिन हम सभी एक दो को मिलते हैं, तिल गुड़ देते हैं और बोलते हैं कि मराठी मध्ये म्हणतात तिळ गुळ घ्या गोड गोड बोला। लेकिन हम कहेंगे कि ये मीठी चीज लो तिल गुळ, और बाबा के कहने के अनुसार मीठी मीठी अवस्था बनाओ, क्योंकि बाबा हम सभी से यही चाहते, सोचो भला करो भला, कर भला तो हो भला। और कहते हैं कि करते चलो सबका भला, जीवन जीने की ये है कला। तो ऐसी सुंदर कला अच्छा सोचने की, अच्छे सोच को बोल में लाने की और अच्छे सोच को कर्म तक लाने की शक्ति प्यारा बाबा हम सभी को दे रहा है, हम सभी भी ले रहे हैं। और हरेक आत्मा अच्छे से अच्छा सोचकर, अच्छे से अच्छा बोलकर, अच्छे से अच्छा करके अपना भाग्य बना रही है। संगम युग सुहावना युग है, हम सभी जानते हैं। कदम कदम पर पदम जमा करने का युग है, ये भी जानते हैं। और उसमें भी जब मधुबन में आते हैं तो मधुबन का तो एक एक सेकंद हम सभी के लिए बहुत अनमोल होता है। हमको याद है कि जब हम पहले पहले आते थे पांडव भवन में, तो 7 दिन रहते थे, तो 7 दिन में से जिस दिन अंदर आए उस दिन से लेकर के जिस दिन बाहर जाना होता था वापस, उसी दिन हम प्रवेश द्वार को क्रॉस करते थे। पूरे 7 दिन क्लास सुनो, बाबा 2 बारी मिलते थे उस समय, कमरे में जाओ तपस्या कुटी में जाओ, शांति स्तंभ पर जाओ, क्लासेस सुनो, तो थोड़ा भी बाहर नहीं जाते थे। और कौन सा आज दिन है कौन सा, वो भी याद नहीं रहता था। खैर, समय की गति आगे बढ़ती गई और अभी हम देखते हैं कि 90% भाई बहन तो पूरा लाभ लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बाहर मार्केट इधर उधर ज्ञान योग का टाइम भी उसमें गवा देते हैं। तो हम सभी एक दो को यही सहयोग देंगे कि सभी को ज्ञान योग करना है, शांति बनाते हैं। अभी तो बहुत कम दिन हमको मिलते हैं, चार दिन में तो पूरा हो जाता है, तो उसका हम पूरा ही लाभ लेवे। ठीक है सबको? कोई मतलब आपका फ्रेंड कोई बोलता है मैं बाहर जाके आता हूं या इधर जाके आता हूं, आप उसको बोलना नहीं, बाबा आने से पहले दो दिन और बाबा आने के सेकंड डे, ये चार दिन तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मधुबन हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत करता है, तो हम उस मेहनत को सफल करें। बाकी आज विशेष समय के लिए मुझे एक कहानी याद आई, समय बड़ा बलवान है, समय की हमें बहुत वैल्यू करनी है। और समय कैसे फास्ट जा रहा है आप सभी भी अनुभव करते होंगे, देखते देखते 15 साल चला गया, 16 साल आ गया और उसमें भी 14 दिन बीत गए। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे समय बहुत कीमती है, और उसमें भी जब इस धरणी पर आते हैं तो यहाँ का तो सेकंड सेकंड हमें अच्छी स्मृतियों में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से सफल करना है। तो कहानी हो सकता है आप सभी ने सुनी भी होंगी। कहानी इस प्रकार है कि एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे एक कुआं था और दूसरे वृक्ष पर एक तोता और मैना बैठे थे, इस वृक्ष पर एक बंदर बंदरी बैठे थे, दूसरे वृक्ष पर तोता मैना बैठे थे। तो तोता मैना की भाषा बंदर बंदरी को समझ में आती थी, तो तोता मैना आपस में बोल रहे थे कि इसी वक्त अगर ये बंदर बंदरी नीचे कूद जाएंगे तो ये राजकुमारी बनेंगे, इसी वक्त। तो जो बंदरी थी उसने सुन लिया, कूदी, जैसे कूदी राजकुमारी बन गई। बंदर सोच में पड़ा कि क्या मालूम ऐसे कभी होता है क्या। जब उसने देखा कि बंदरी तो राजकुमारी बन गई, तब उसको ख्याल आया कि मैं भी अभी कूदूं। लेकिन जैसे वो कूदा वो राजकुमारी नहीं बना, लेकिन उसको बहुत चोट आई सारी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तोता मैना ने क्या बोला था, इसी वक्त सुनते ही, तो उसने टाइम गवा दिया। तो वो बंदर जो था वो तो राजकुमारी तो बना ही नहीं, लेकिन वहां से एक व्यक्ति आता है उसको और भी खड़ा करता है और डमरू बजा करके उसको डांस सिखाता है। तो ये है समय का महत्व। अभी हमें भी बाबा बार बार बहुत सारे इशारे, आज तो जब मैं मुरली सुन रही थी, रतन मोहिनी दादी जी इतना सबको बोल रहे थे कि 6 दिन 7 दिन साइलेंस में रहो, साइलेंस में रहो। तो ये जो भी बड़े हमको इशारे देते हैं, और ये तो समझो ये जनवरी मास हम सभी बहुत लकी है क्योंकि एक तो जनवरी मास, दूसरा फिर 18 जनवरी का मास और 16 साल, तो सब जैसे कि वैल्यूएबल बातें आ गई है। तो हम लोग भी अपने लिए, मटेरियल तो बाबा बहुत दे रहा है, हम अपने लिए सोच करके, क्योंकि सबका आधार तो सोच ही होता है, इसलिए बाबा हम बच्चों को एक बात सुनाते कि अंतर्मुखी हो जाओ, भले काम करो, जो भी जिम्मेवारी है निभाओ, लेकिन वो करते हुए भी आप अंतर्मुखी रहो, मतलब मेरे अंदर क्या सोच चल रहा है। कल किसी ने, मुझे लगता है शाम को, प्रेम मसन भाई ने क्लास किया था, तो उन्होंने बोला था कि अभी ऐसा समय आया है सोच कर सोचो, क्योंकि हमारे सारे जीवन का आधार, हम सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि सोच ही है, याद ही है कि मुझे क्या याद आ रहा है। और मीठे बाबा तो हमको इतनी स्मृतियां दे रहे हैं, और जनवरी मास के लिए तो खास बाबा कहते हैं स्मृति में ही रहो, और स्मृति से समर्थि लाओ। ज्ञान की बातें तो आप और हम सभी सब प्रकार से जानते हैं, मानते भी हैं और कर भी रहे हैं। खाली बाबा कहते करने की स्पीड थोड़ा बच्चे बढ़ाओ, उसको बाबा कभी तीव्र पुरुषार्थ बोलते, कभी ऊंची उड़ान बोलते, कभी उड़ती कला बोलते। और अभी इस जनवरी मास में डबल लाइट, रोज हमको पॉइंट्स आ रही है, हल्के रहो, बहुत हल्के रहो, क्योंकि ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी भारीपन आ जाता है, चाहे परिस्थितियों के कारण आता, कभी अपने ही संस्कारों को हम चेंज नहीं कर पाते उसके कारण आता, कभी टाइम को, संकल्पों को वेस्ट कर देते उसके कारण आता, तो आ जाता है। तो खास हमको डबल लाइट की सारी बातें आ रही है, तो ज्ञान की ही बातों को हमने थोड़ा सा बीच बीच में, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं और क्लास वालों से भी करा लेते हैं। एक हमने चार्ट बनाया था, और उस चार्ट के अंदर, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट ही परिवर्तन का आधार है, तो हमने उसमें एक अभ्यास दिया था सबको, और सभी भाई बहनों ने और हम बहनों ने भी जो सेंटर में रहती है, उसमें मेनली अभ्यास था कि सबको आत्मा के रूप में देखना है। आत्मा का ज्ञान तो हम बच्चों के पास है, लेकिन सही में हर एक, कोई भी सामने आए तो उसको आत्मा के रूप में देखना है, सोचना है यह आत्मा मेरे सामने आई है, यह आत्मा मेरे सामने आई है। फिर हमने क्लास वालों से, हम रोज पूछते हैं कि कैसे लगा यह अभ्यास, तो दो तीन मास के बाद भाई बहनों ने कहा कि बहन जी बहुत अच्छा लगा, और मोस्टली उससे एक फायदा ये हुआ, उसमें एक पॉइंट ऐसी थी कि बिल्कुल शब्द को खराब नहीं करना है, कटु वचन नहीं बोलने हैं, या क्रोध के वश कोई शब्द नहीं बोलना है। तो भाई बहनों ने कहा कि बहन जी, और फिर हम लोग क्लास में हाथ उठाते थे तो कहा कि शब्दों के ऊपर तो हमारा पूरा कंट्रोल आ गया कि सबको आत्मा रूप में देखने से हल्के भी रहते हैं और खुशी की परसेंटेज 70% 80% हम अपने आप खुश रहने लगे। तो हम सभी ब्रह्मा बाबा के लिए भी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी पहला पुरुषार्थ यही किया था कि सभी आत्मा है, आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, बच्चों के लिए भी लिखा आत्मा है। तो हम सभी प्रैक्टिकल में एक एक को देख करके ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये अभ्यास जरूर करें। यही ये अभ्यास हमको अपने आप परिवर्तन में या मन की स्थिति को अच्छा रखने में या सबके साथ मिलनसार होकर चलने में मदद करता है। तो आज के दिन हम थोड़ी सी ज्ञान योग की टिप्स देखते हैं। छोटी छोटी टिप्स है, कभी कुछ कभी कुछ धारणा में लेते हैं तो उसका फायदा होता है। तो आज हम पहली बात शुरू करते हैं अ से। अ से शुरू होने वाली हम चार बातें बार बार करते रहे। उसमें पहली बात है हम खुद आत्मभान में बहुत रहे। मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। बाबा ने हमें बहुत सारी यादें दिलाई है, सच्चाई बताई है, हम उसमें रहे कि मैं आत्मा हूं, आत्मभान में रहे, सोल कॉन्शियस में रहे, पुरुषार्थ करे कि मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं। आत्मा बहुत इजी है लेकिन जरूरी यही है। तो एक बात करें हम आत्मभान में रहे, बहुत रहे, कोशिश पूरी करें। फिर दूसरा हम अभ्यास करें अ से शुरू होने वाला। थोड़े थोड़े देर के बाद सारा अपना ऐसे शांत रहे और अशरीरी बनने की कोशिश करें। अभ्यास, स्टूडेंट है ना हम सभी, और बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमको दिया है, देवी देवता बनने का, सतो प्रधान बनने का। तो ये जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए अशरीर, थोड़ी देर हो गई, 2 घंटा 3 घंटा हो गया, सारा काम थोड़ा बाजू रखने का, 5-1 मिनट शांत एकदम पूर्ण आत्मभान में, मना जैसे शरीर डिटैच होने की कोशिश करे, आत्मभान में कंप्लीट स्वयं को स्थित करे। फिर तीसरा हम ये अभ्यास करें अ से शुरू होने वाला, सबको अपना समझे। ऐसे भी बाबा ने हमको कहा ही है कि सभी आपके ही भाई बहन हैं, क्योंकि जो अपने होते हैं उनको हम समा लेते हैं, जो अपने होते हैं उनको हम सहन भी कर लेते हैं। तो एक शिव बाबा के बच्चे सब अपने हैं, ये भावना हम बढ़ाए। किसी भी स्टेट का हो, किसी भी गांव का हो, कोई भी हो। बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति दिलाई, सब तुम्हारे भाई है, भाई बहन है। इतने बड़े परिवार का जो आनंद है वह हम जरूर लें। और चौथी बात है, हम सदा आशावादी बन के रहे, निराश कभी नहीं होना। कभी कभी माताएं बोलती है कि बहन जी बैठते तो है योग में लेकिन योग लगता नहीं, क्या करे। तो योग क्या चीज है किसी बड़े भाई से समझ के ले वे, लेकिन अच्छी तरह से हम योग में रहे, परिवर्तन करें। आजकल तो एक गीत भी बहुत प्रसिद्ध है और प्यारा लगता है सबको, जिनके आगे विघ्न बहुत आते हैं उनके लिए वो बहुत सुंदर गीत बना हुआ है कि विघ्नों से तुम कह दो मेरा बाबा बड़ा है, खुदा बड़ा है। और है भी सचमुच ना, कि बाबा तो कंप्लीट मदद हम बच्चों को हर पल। मुझे तो कभी कभी लगता है बाबा कहते कि तुम कुछ करो ही नहीं, खाली मैं जो कहता हूं करो, बाकी मैं कर लूंगा तुम्हारा सारा। तो अमृत वेले उठने में, स्वयं को क्रोध जीत बनाने में, पुराने संस्कारों को मिटाने में, या घर परिवार में रहते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ इतना जबरदस्त हिसाब होता है, वो व्यक्ति जैसे उसके पीछे हाथ धुलाई करके लगी रहती है ना? तो कभी कभी व्यक्ति थक जाता है, लेकिन नहीं, बाबा है और बाबा बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार हम आशावाद को कभी नहीं छोड़े, सदा बस जो बाबा ने कहा मुझे करना है, जो बाबा ने कहा मुझे करना है, हाजी का पाठ पक्का करना है। इसलिए आप कर सकते हैं तो देखो, जब मुरली सुनते हैं तो बहुत अच्छी तरह से अर्जुन बन के सुने। बाबा गीता का ज्ञान तो सुना ही रहा है, हम अर्जुन बने, बहुत अच्छी तरह से सुने बाबा को, कहे हाँ बाबा मैं करूंगी, हाँ बाबा मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। तो जैसे हम हाजी कहते तो बाबा उसमें बल भरता। फिर है ब से शुरू होने वाली चार बातें हम ध्यान में रखेंगे। उसमें एक बात है, बाबा हमको 5000 साल के बाद मिला है, ये तो हम सभी जानते हैं। और चाहे कोई छोटे है तो इस जन्म में उन्होंने भक्ति नहीं की है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है तुमने 63 जन्म मेरी भक्ति की है, भले इस जन्म में नहीं की है। और कई ऐसे भाई बहन है जो इस जन्म में भी उन्होंने बहुत भक्ति की है। तो बाबा को बहुत प्रेम से हम याद करें, सुखा सुखा याद नहीं करें। चाहे आप 2 मिनट के लिए बैठो, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो। आपने देखा होगा ना, जो घरों में रहने वाले भाई बहन है, आपका बच्चा ओ माँ करके जब नजदीक आता है तो माँ को कितनी खुशी होती है। या पप्पा के पास भी एकदम प्रेम से आता है तो पप्पा को भी बहुत खुशी होती है। तो उसी प्रकार बाबा को हम कितना भी याद करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, प्रेम इमर्ज हो, प्रेम से याद करें। रूहरिहान करें। कोई भी बात हम बाबा से बोल सकते हैं, चाहे परिवार की हो चाहे आध्यात्मिक परिवार की हो, बड़े प्रेम से बातें करते रहे। फिर है, हम बातों में नहीं आए, बात को नहीं देखेंगे, बाप को देखेंगे। कई बार आत्मा इसमें अटक जाती है, बात में, टाइम, एनर्जी, संकल्प वेस्ट करती है, छोड़ती नहीं जल्दी बात को। बाबा ने एक बार कहा था, बात में भी अक्ल है, एक बार हुई वो वापस नहीं आती है, लेकिन बच्चे बात को नहीं छोड़ते हैं। तो हम सभी तो अच्छी तरह जानते कि जो कुछ होता है, मान लो मन के विरुद्ध भी होता है या नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है, लेकिन बाबा ने तो कहा है हर एक के पीछे ड्रामा है। तो हम संगम युग पर ज्ञान युक्त बन करके, कहा है ना ज्ञानी तो आत्मा बनो, तो ज्ञान युक्त बन करके हम बात को छोड़ दें, बाप को देखें। बाबा ने ढेर सारी बातें बताई है, उसको याद करें। तीसरा है, हम बदले, स्वयं बदले, मुझे बदलना है। हम जिस दिन सेंटर में आए, ज्ञान में आए, तो हमने यही सुना है, स्व बदलो जग बदलेगा। और आपने आज कहते हैं, मेरे को एक बहन ने बताया कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब भक्ति के हिसाब से इलाहाबाद में जमुना और गंगा मिलते हैं, लेकिन कलकत्ता में आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, और कलकत्ता में गंगा और सागर का, मतलब गंगा जमुना दोनों इकट्ठी आती है और कलकत्ता में सागर से मिलती है, इसलिए आज के दिन का बहुत महत्व है। और हम सभी सचमुच सागर के पास आए हैं, हम सभी नदियां हैं। तो आपने देखा होगा कि नदी की विशेषता क्या होती है, नदी की विशेषता ये होती है कि नदी ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, नदी के आगे कोई पत्थर आ जाता तो नदी पत्थर को देख करके रुकती नहीं या उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वो ऐसे हो जाती, आगे चली जाती। तो उस नदी का टाइटल बाबा ने हम आत्माओं को दिया है, और बाबा सागर है। तो हम, चलो हमारे आगे भी बहुत बातें आती है, क्योंकि आपने देखा होगा संगम पर हम बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया, अंदर ही अंदर अपनी ही बुराइयों से लड़ाई की, उसका वर्णन महाभारत गीता के रूप में दिखाया, इतना बड़ा महाभारत दिखाया, युद्ध तो इधर हुआ, रूप कितना बड़ा दिया है। तो हम भी अपने जीवन में, क्योंकि हमको मालूम है भगवान आ चुका है, इंसान को बदल रहा है, और अब दुनिया बदलने वाली है, ये संसार में किसको भी मालूम नहीं, खाली हम आत्माओं को मालूम है कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है। तो फिर हम क्यों रुके, किसके लिए, बात के लिए? आगे चले जाओ। नदी है, पत्थर को तोड़ना नहीं, किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं रुकना, उसको भी शुभ भावना देना, शुभकामना देना, सोचना उसके लिए अच्छा, आगे निकल जाना। तो खुद को बदलना है। और चौथा, हम ब से शुरू होने वाली बात ये रखेंगे कि बेफिक्र बादशाह की जो अनुभूति है, निश्चिंत जीवन, संसार भी चिंताओं में जल रहा है, हमको ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई छोटी चिंता पकड़ के व्यक्ति बैठ जाता है, तो हम चिंता नहीं करेंगे। बेफिक्र, हमने सारी चिंता किसको दी है? दी है ना बाबा को? मेरा सब कुछ बाबा का। और कभी कभी है ना, ऐसे बैठ करके सोचना, क्या सचमुच मैंने दिया बाबा को सब कुछ? सचमुच दिया? फिर पूछो, फिर पूछो, सचमुच दिया? फिर पूछो, फिर मुझे क्यों चिंता हो रही है? अपने आप को अंदर से खोलते जाओ, कुछ अंदर रखो नहीं, क्योंकि अभी अंदर की सफाई चल रही है हमारी, अंदर आत्मा को हमें क्लीन क्लियर करना है, क्लीन करना है, स्वच्छ, क्लियर, स्पष्ट, दोनों कर देना है। इसलिए बेफिक्र, बाबा जो कह रहा है ऐसे हमको सोचना है, बाबा जैसे देखने के लिए बोल रहा है ऐसे हमको देखने की कोशिश करनी है, बाबा जैसे बोलने के लिए बोल रहा है ऐसे बोलना है, बाबा ने जैसे करने के लिए कहा है वैसे करना है, बाकी निश्चिंत। बेफिक्र बादशाह। फिर तीसरा है क, तो क से शुरू होने वाली भी चार बातें बुद्धि में रखेंगे। सबसे पहला है, हमें कमल फूल के समान रहना है। ये बाबा साकार मुरली में तो रोज बोलते हैं, कमल फूल समान रहो, कमल फूल समान रहो ना? कीचड़ तो आजू बाजू बहुत फैला हुआ है, और अभी तो दिन प्रतिदिन और कीचड़ वाली बातें हम सुनते रहते हैं, और हमको तो हमेशा, जो आप भाई बहन घरों में रहते हैं, आपके प्रति बहुत नाज रहता है कि सचमुच आपके आजू बाजू कीचड़ है, लेकिन फिर भी उसमें रहते हुए बाबा ने आपको एक ही काम दिया। बाबा ने ये नहीं कहा, वो हम लोगों को कहा, गांव गांव जाओ, सेवा करो, बच्चे दिन में भी नींद नहीं करो, सेवा करो, बच्चे इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन परिवार वालों को बाबा ने क्या बोला? तुम कमल फूल समान रह के दिखाओ, बस यही कमाल तुम करो। उसको ही बाबा कभी कहते, शोकेस के शोपीस बंद करके रहो, सैंपल पीस बंद करके रहो। तो कमल समान, आपने ऐसे भी देखा होगा, हमारी जो इंद्रिया है उसका शेप जो है वो कमल के पंखुड़ी जैसा ही है, खाली अभी वैसा काम करना है, और उसके लिए फिर बार बार ये स्मृति रखनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक बार हम दादी जी के साथ बैठे थे, ऐसे ही पूछा, दादी क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? दादी ने कहा बार बार स्मृति लाओ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं उसकी फीलिंग करो। एक है स्मृति, दूसरी है फीलिंग। जैसे देखो कोई बात फील होती है, निगेटिव बात, तो चेहरे पे आ जाती है, मुख से भी निकल जाती है। तो शुद्ध फीलिंग में रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और फिर ऐसा बोलो, देखो, तो कमल फूल समान हमको रहना है। दूसरा, करते चलो सबका भला, ये याद रखना है। करना है हमको, संगम युग बोलने का युग नहीं है। भक्ति में यही सुनते आए कि सुनो और छोड़ो। सत्संग में भले जाओ, सुनो, कान दो दिए हैं, इधर से सुनो, घर तक नहीं लाना उसको। लेकिन मीठे बाबा ने कहा नहीं, हर चीज बच्चे तुम्हें कर्म तक लानी है, और उसके लिए मेरे से पावर लो, शक्ति लो। स्मृति रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। कई सारी स्मृतियां बाबा ने दी हुई है। तो हमको कर्म तक लाना है। जैसे बाबा खुश रहने के लिए कहते, बाबा सबके साथ प्रेम से चलने के लिए कहते, कभी बाबा हमको कहते कि बच्चे, जैसे आज की तो कितनी बातें थी ना, निंदा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो ना, बहुत सारी बातें कितनी, तो बाबा समय प्रति समय हमको बताते रहते। तो हम क्या करें, कर्म तक लाना है। तीसरा, हमको ये याद रखना है, क से शुरू होने वाली बात, कल कल नहीं करना है। हम कई बातों में ऐसा सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कभी सोचते हैं कि रक्षाबंधन से शुरू करेंगे, कभी सोचते हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जो सेवाओं की बात अलग है, वो सबको मिलके करनी होती है, उसके लिए डेट टाइम फिक्स करना होता है। लेकिन परिवर्तन की जो बात है, खुद के परिवर्तन की, या खुद को नियम धारणाएं मर्यादाएं उनमें ढालने की, उसके लिए कल नहीं, अब भी, अभी से करेंगे। तो कल कल नहीं करना है। और फिर आता है ड, ड तो याद आ गया ना, 3 बिंदी में से 1 बिंदी है। बाबा कहते हैं ना, कभी तुम्हारा व्यर्थ आत्मचिंतन से स्टॉप नहीं होता है, चलो, फिर बाबा को याद करके भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक, फिर सोचो ड्रामा। तो ड मीन्स ड्रामा। हम ड्रामा को बहुत याद रखेंगे, क्योंकि संगम युग हमारी रियल्सल चल रही है। सत्युग प्रैक्टिकल है, संगम युग रियल्सल है। रियल्सल में व्यक्ति कभी इधर उधर हो जाता है, फिर डायरेक्टर उसको बोलता है ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ड्रामा चल रहा है, दूसरों के पार्ट को हमें साक्षी होके देखना है, मदद करनी है, लेकिन उनके पार्ट पर अपना पार्ट आधारित नहीं रखना है। जैसे हम कई बार कहते, इन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं। शिव बाबा ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास रख करके ज्ञान की बातें सुनाई है, तो हम उसको खुद करें। ड्रामा में जो बाबा ने मुझे पार्ट दिया है आत्मा समझ करके रहने का, वो मुझे करना है। मुझे दूसरों के पार्ट को देखना है, ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरी बात, ड से शुरू होने वाली, डरना नहीं है किसको। कई बार व्यक्ति डर जाता है, व्यक्ति से डरता, परिस्थिति से डरता नहीं, क्योंकि हमको अच्छी तरह से मालूम है हमको मदद करने वाला सर्वशक्तिवान है। बाबा को कहना, बाबा तुम भी मेरा हाथ पकड़ के रखो, मैंने भी पकड़ा है लेकिन तुम भी पकड़ के रखो। और बाबा ने कल कहा था कि ऐसे कई बार बाबा कहते हैं अकेले नहीं रहो कभी, ये मायावी राज्य है, अकेले रहेंगे तो डरेंगे, बाबा के साथ रहो तो डर नहीं लगेगा परिस्थिति का, व्यक्ति का, या कई बातों का डर होता है। एक बार हम लोगों ने ऐसे चिटचाट की थी, डर के भी बहुत कारण होते हैं, तो डरना नहीं है। फिर तीसरी बात है, ड से शुरू होने वाली, ड्रिल करते रहना है। बाबा ने कहा था कि तुम्हारी बुद्धि को अभी सूक्ष्म बनाओ, मोटी बुद्धि नहीं, महीन बुद्धि धारण करो तो महान बनते जाओगे। तो उस महीनता के लिए ड्रिल, अभी अभी यहां, फिर फरिश्ता, फिर बिंदु, फिर देवता, फिर पूज्य, पांच स्वरूप का अभ्यास, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, फिर निराकारी, ड्रिल करते रहो। और डमरू बजाते रहो, ज्ञान डमरू है। कई बार आपने बाबा के मुरली में सुना होगा कि सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन मन के। कई बार ब्राह्मणों को तन के द्वारा भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तो तन मन के कलह क्लेश मिट जाने के लिए बाबा कहते ज्ञान सुमिरन करो। तो हम ज्ञान का डमरू खुद बजाएंगे, खुद के लिए, और कभी कोई मिलता है तो उसके लिए भी बजाएंगे, है ना। लेकिन सुमिरन बहुत अच्छी तरह से करें, डमरू का बहुत महत्व है। कहते शंकर ने भी डमरू बजाया और आदि मध्यांत का राज खोला। और फिर ड से शुरू होने वाली चौथी बात है, मन ही मन डांस करते रहे, मन ही मन, अपने मन की बहुत संभाल करे, मन को थोड़ा भी नीचे आने नहीं दे, क्योंकि बाबा रोज मुरली हमारे लिए जो सुनाता है वो मन को ऊंचा उठाने के लिए। एक बार हम लोग एक कॉलेज में गए थे, तो वहां पर एक बहन ने योग कमेंट्री की, तो उसने सुनाया कि अभी हम सकारात्मक चिंतन करेंगे और फिर योग कमेंट्री की। तो चार बच्चों का ग्रुप आया और उन्होंने सुनाया कि सकारात्मक चिंतन करो, सकारात्मक चिंतन करो, ये हम सुनते हैं, लेकिन सकारात्मक चिंतन क्या करना होता है वो आज हमको यहां मालूम पड़ा। तो बाबा की मुरली माना सारे सकारात्मक चिंतन है, तो सोचते रहे अंदर ही अंदर, और मन का काम है सोचना। बाबा कई बार कहते हाथ कार दे दिल यार दे, है ना, हाथों से काम करते रहो, मन से ऊंची उड़ान भरते रहो। कभी बाबा मन मना भव कहते, मध्याजी भव कहते, तो हम अंदर ही अंदर ऐसे मन को अच्छे अच्छे सोच दे करके, सोच का तो पूरा समझो हमको खजाना बाबा के द्वारा मिल जाता है। इसलिए मुरली सुनते समय ये भाव हम जरूर रखें कि मुरली सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ज्ञान का खजाना हम अपने अंदर भर रहे हैं। ज्ञान का खजाना बाबा देता है, और कई बार बाबा कहते मेरे एक एक रतन की वैल्यू बहुत, बच्चे बहुत है, अनमोल है। तो इस प्रकार हम ये सारी ये टिप्स है छोटे छोटे, जिसको हम बुद्धि में रखें और अपनी अवस्था को बहुत सुंदर बनाए। फिर एक लास्ट में भी हम आपको छोटी सी कहानी जो हमको बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लगेगी, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी भी होंगी, फिर रिवाइज हो जाएंगी। वो कहानी इस प्रकार है कि एक परिवार था, रिच परिवार था, और उनको चार बेटे थे। चार बेटों को चार बहुएं थी। समय प्रमाण परिवार बढ़ता गया, बड़ा होता गया, रिच तो था ही, तो हर बहू को लगता था कि सारे घर की चाबी मेरे पास हो। लेकिन सभी अच्छी बहुएं थी तो किसको देवे, तो माता पिता ने सोचा कि एक बार परीक्षा लेते हैं इनकी। तो माता पिता जा रहे थे यात्रा के लिए, बोला हम 6 मास यात्रा के लिए निकलते हैं, सभी आओ बैठो। सभी को बिठाया, सबको लगा अभी तो कोई किसी को बोलेंगे आप संभालो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बोला हम 6 मास के लिए जा रहे हैं, 6 मास के बाद यात्रा करके आएंगे, तो आपको हम ऐसे बोल करके सबको एक एक कटोरी अच्छे गेहूं दिए। चार बहुओं को बुलाया, गेहूं दिया, बस हो गया काम, वो निकल पड़े यात्रा पर। अभी जब वो यात्रा के लिए निकले तो अभी देखो चार बहुओं के चार सोच। एक ने सोचा कि सास ससुर की बुद्धि शायद ठीक नहीं है, यात्रा के लिए निकले लेकिन जाते जाते क्या दिया, गेहूं दे दे के भी गेहूं दिया। तो बड़ी ने क्या किया, फेंक दिया, क्या करेंगे इसको रख करके। दूसरी जो थी थोड़ा सोचा कि ठीक है गेहूं ही दिए हैं, क्या करूं अभी इसको, उसने जाकर के गेहूं में मिक्स कर दिया, फेंका नहीं, मिक्स कर दिया। तीसरी ने सोचा कि सास ससुर ने गेहूं दिए हैं, कुछ तो समझ के दिए होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे कि क्या करूं इसके, तो उसने सोचा इनकी अमानत है, इसको मैं संभाल के रखूं। तो एक अच्छा डब्बा लेके उसमें वो डाल करके तिजोरी में रख दिया। और चौथी जो थी वो भी उसने भी थोड़ा सोचा, फिर उसको लगा कि अभी ऐसे ही कहाँ रखने के बजाय इसको मैं खेती में डालती हूँ। तो जाकर के गेहूं को खेती में डाल दिया। चलो 6 मास हो गए, सास ससुर आ गए, उसके बाद भी 15-20 दिन चले गए। फिर अचानक एक दिन वो दोनों बैठे और सबको इकट्ठा किया और सबको पूछा यात्रा का समाचार आदि सुना करके कि मैंने आप सबको गेहूं दिए थे, लाओ सभी गेहूं। तब बड़ी तो हड़बड़ गई कि कहां से लाओ, वो तो मैंने फेंक दिए। उसने घबराते घबराते बोला कि आपने तो दिया था मुझे, लेकिन मैंने सोचा क्या गेहूं रख करके करूं तो फेंक दिए। बोला ठीक है। दूसरी ने कहा कि कैसे लाऊं मैं, मिक्स कर दिए। बोला ठीक है। तीसरे ने कहा कि लेके आती हूं, तो कपाट में से लेके आई ये आपके गेहूं। ठीक है। फिर चौथा जो था उसने कहा ठहरो मैं लेके आती हूं। उसने जाके बोरी लेके आई। बोला आपने मुझे इतने दिए थे, मैंने खेती में डाले, खेती तो फिर 1000 गुना बना करके देती है, तो ये गेहूं। तो ससुर जी ने कहा जो बड़ी है वो घर की सफाई का काम करेगी, क्योंकि गेहूं का कदर नहीं किया। सेकंड जो थी उसको बोला तुम घर का किचन संभालोगी अभी। थर्ड जो थी उसको बोला जो गहने आदि है घर में उसको संभालने का तुम काम करोगी। और चौथी को बोला ये तुमको चाबी लो, तुम सारे घर को संभालेगी, क्योंकि तुमने गेहूं को समझ भी लिया, फिर बढ़ाया भी, उसको ठीक ढंग से तुमने सफल किया। तो बात तो समझ में आ गई था सबको कि हमको भी बाबा सारा खजाना दे रहा है, तो हम सभी भी कौन सी बहु बनेंगे? बहु तो नहीं, हम बाबा के अनन्य रत्न है, तो हम क्या बनेंगे? 4 नंबर की बनेंगे ना सभी। अर्थात बाबा जो इतना खजाना दिन रात, बाबा ही क्या, मैं कभी कभी सोचती हूं ये मधुबन की एक एक दादिया, एक एक ब्राह्मण, हमारे सेंटरों में भी हमारी बहने, अनन्य भाई बहन कितना हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत को हम सभी सफल करेंगे। ओम शांति।